संत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। देखो समय सार परमागम में जीव कर्मों का करता है या नहीं इसके बारे में चर्चा चल रही है। भौतिक कर्मों का करता है कि नहीं ये प्रश्न है और इस संदर्भ में हम 81वीं गाथा से बात करें तो 83वीं और 84वीं ये दो गाथाएं हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 83वीं गाथा में निश्चय नय की बात कही है और 84वीं गाथा में व्यवहार नय की बात कही है। 83वीं गाथा में जिसमें निश्चय नय की बात कही है उसके ऊपर की गाथाओं में वो निश्चय नय के पोषण की बातें हैं और प्रमाण की बात है और 84वीं गाथा के बाद जो व्यवहार की गाथा है उसके आगे सब व्यवहार संबंधी हे उपादेयता कि वो कैसा सत्यार्थ है इसकी चर्चा है। इसे आगे पीछे एकदम मिला करके एक बहुत व्यवस्थित विषय है। जो चले गए वो तो चले गए उनकी बात अब जाने दें लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अभी यहां आगे पीछे 10-5 पेज पढ़ते क्यों नहीं है। यहां कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है कि आत्मा पौद्गलिक कर्मों का करता भाव कर्मों का करता है या नहीं जो भी कहा व्यवहार से है और निश्चय से नहीं वो बराबर दोनों के बारे में कथन है एक एक गाथा में और गुरुदेव श्री के कोटेशनों में बहुत अत्यंत स्पष्ट है ये विषय। जिस विषय में कहते हैं बहुत चर्चा चल रही है और विवाद सुलझता नहीं है यदि समय सार अनुशीलन के प्रकरण पढ़ लें तो मुझे कहीं कोई विवाद नजर नहीं आता और मेरे से तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकता है कि वो जो कहेगा मैं उसकी बात का किसी की बात का समर्थन करूंगा। मैं तो जो पूज्य गुरुदेव श्री की बात आमने से चली आई है और मैंने खूब सोच समझ कर सब ग्रंथों को आलोड़न करके इसमें लिखी है तो बहुत सोच समझ के लिखी है तो वही बात मेरे से आएगी। तब मैं आपको जरा कहता हूं थोड़ा सा आपको अंदाज लगेगा आत्म करेना कर्म गुण 81वीं गाथा आत्म करेना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे निश्चय की बात होगी ना ये बिल्कुल नक्की और पक्की बात है कि आत्म करे ना कर्म गुणे इसमें द्रव कर्म भाव कर्म सब ले लेना और नो कर्म भी ले लेना। कर्म के नाम से जो भी जगत में हो वो सब ले लेना। आत्म करे ना कर्म गुणे ना कर्म आत्म गुण करे अपन मानते कर्म के उदय से आत्मा में ये हुआ और आत्मा ने ऐसा किया तो कर्म बंधे माने आत्मा ने कर्म बांधे और आत्मा में जो विकृति हुई वो कर्म के उदय से हुई। तो वो कहते नहीं निश्चय ने कहता कि बिल्कुल ये बात सही नहीं है पर परस्पर परस्पर पर नमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं ये बात पर दोनों में जो परनमन होता है परस्पर उन दोनों के प्रणमन में दोनों परस्पर में निमित्त हैं ये उसका निमित्त है वो इसका निमित्त है। एक तो ये बात समझ लो कि निमित्त हमेशा पर होता है ऐसा एक दोहा है ना उपादान निज गुण जहां ता निमित्त पर होए निमित्त माने पर उपादान माने स्वयं ये कह रहे हैं कि जब आत्मा रागादि भाव रूप परिणमित होता है तब ऐसा संभव नहीं है कि उस समय रागादिक का उदय ना हो, रागादिक का उदय नहीं हो जा रहा। मैं क्रोध नाम सब देता हूँ सुविधा के लिए। देखो 25 कसाओं के नाम जानते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ वगैरह। तो जितनी 25 कसाएं कर्म की प्रकृतियां भी हैं, 148 कर्म की प्रकृतियों में ये 25 भी हैं। दर्शन मोहिनी की है ना 3 प्रकृतियां और चार मोहिनी की 25 प्रकृतियां, तो ये पौद्गलिक भी है, क्रोध पौद्गलिक भी है। और आत्मा में ये भाव पैदा होते हैं, ये आत्मा के भाव है। तो कहते आत्मा में जो भाव पैदा हुआ उसका उपादान करता तो आत्मा है ना। अभी जो उज्ज्वला बहन आज बहुत अच्छी क्लास ले रही है नमित उपादान की, शाम को उन्हें शुरू किया है, उसमें जो आप ध्यान से सुनेंगे तो बात आपको ख्याल में आएगी। उपादान तो आत्मा है, जो राग पैदा हुआ आत्मा में, क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध कर्म नाम का कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और वो इतना पक्का और नक है कि वो ऐसा असंभव है, संभव ही नहीं है कि जब हमें गुस्सा आ रहा हो तब क्रोध कर्म का उदय ना हो। ऐसा कदाचित हो सकता है कि क्रोध कर्म का उदय हो और हमें गुस्सा ना आए। क्या अब आप कहेंगे कि ये उल्टी उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? इसलिए कि कर्म तो समझदार है नहीं, फिर समझदारी से काम करेगा है? तो वो तो अपने समय पर उदय में आएगा। तो जब कर्म उदय में आएगा उस वक्त आत्मा राग रूप प्रण में और नहीं प्रण में, ये तो समझदार है। यदि ऐसा मान लेंगे कि प्रणमन करना ही पड़ेगा, गुरुदेव की भाषा में कहूंगे डिग्री टू डिग्री, तो मोक्ष का मार्ग रुक जाएगा। क्यों तो अनादि से कर्म का उदय तो हमेशा ही है, मिथ्यात् कर्म का उदय ही है, और मिथ्यात् कर्म के उदय में ही मिथ्यात् कर्म के नाश का पुरुषार्थ होता है ना। उसका क्रोध कर्म का उदय है और हमारा उपयोग दूसरे काम में लग रहा है, आत्मा में लग रहा हो तो उससे बढ़िया कोई दूसरा काम ही नहीं है। लेकिन अपने पुत्र का वियोग हो गया हो और एकदम शोक में लग रहा है तो क्रोध को कहां अवसर है, वो तो रोता रहेगा। अभी करुणानियोग वाले बताएंगे वो उसमें संक्रमण हो गया, उसमें जाके उसके रूप में आ जाएगा, जय हो जाएगा, वो उनसे समझ लेना। लेकिन वो तो एक ही तीव्रता में किसी एक भाव में ही रह सकता है ना, समझ रहे ना। तो ऐसा ऐसा समय हो सकता है, मैंने मिथ्यात्व कर्म के उदय के काल में मन तीव्र में नहीं, टोरम जी ने लिखा है नदी का प्रवाह तीव्र हो उस पर हाथ पैर मारोगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, और मंद में यदि चुपचाप शांति से बहते रहे तो समुद्र में ही जाके गिरने वाले हो, उसमें हाथ पैर मारोगे तो किनारे लग सकते हो। लेकिन कर्म का आत्मा में राग गुस्सा आया है तो उस वक्त ऐसा तो हो सकता है कि सामने वाले ने आपको गाली दी हो कि नहीं दी हो और फिर भी गुस्सा आ जाए बिना गाली दिए भी, और गाली देने पर भी आ जाए, लेकिन वो क्रोध नामक कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर बराबर नियम है, अनबिल नियम बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि वो उसमें निमित्त है। अब भी कर्म बंधे, अब कर्म का उपादान तो काल मन बनना है। अब उसमें ऐसा संभव नहीं हो सकता तीन काल में कि आपके भाव ना हो मुहराग द्वेष भाव और भी कर्म बन जाए, फिर तो चार्ज इसको चेंट जाएंगे, चार्ज अब चेंट जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप राग द्वेष मोह कहें कर्म ना बने, कहा जाने ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप राग द्वेष मोह नहीं करें वो भी बन जाए, और आप करें वो नहीं बने, ऐसा उसको दोनों तरह से कोई आजादी नहीं है। तो इन दोनों में परस्पर निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब असली दिक्कत ये है कि जगत में निमित्त नैमित्तिक जिनका संबंध है उनको ही सारी दुनिया कर्ता कर्म संबंध मानती है, उसको ही कर्ता मानती है, निमित्त को कर्ता कहने का रिवाज है। और जिनवाणी में भी उस जिनवाणी ने भी उस उन कथनों को अपने जिनवाणी में जगह दी है, क्यों दी है वो मैं अभी बताऊंगा। आप समझे ना, इस दोनों में जिन्होंने कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इसलिए उन्हें कर्ता कर्म कहते कर देख लो उसने किया तो हो गया। आप समझे बराबर, वो कहता है उसका कुमार है, कोई घड़ा ऐसा बनाओ, हमने तो मिट्टी रखी थी यहीं पर, वो कुमार था ही नहीं और एकदम मिट्टी में से ऐसा घड़ा हो गया, बन गया और बताओ। जब जब घड़ा बनेगा तो वहां कुमार की हाजिर, गुरुदेव की भाषा में हाजिरी अवश्य रहेगी, और अकेली हाजिरी नहीं रहेगी, उसका योग और उपयोग उसमें लगेगा। योग माने वो जैसे हाथों में से ऐसे ऐसे करेगा ना, चक्का घुमाएगा, उसका नाम योग। और ज्ञान उधर लगा रहेगा, इसका नाम उपयोग। होगा ही होगा, अब सारी दुनिया को वो कुमार ही दिखता है, घड़ा जब बना तब होता हुआ, अब मिट्टी बिताई घड़ा बन रही है, अब वो इस मूर्ख जगत को मिट्टी दिखती ही नहीं कि मिट्टी घट रूप में परिणमित हुई है। क्योंकि यदि ककरीली मिट्टी होती तो घट नहीं बन सकती, रेती थी होती तो घट नहीं बन सकती थी। तो असली दिक्कत क्या है कि उपादान की पर इसकी दृष्टि नहीं है, इसकी दृष्टि वैसे निमित्त पर है, निमित्त पर है। इसलिए कुमार उसका कर्ता दिखाई देता है और भोक्ता भी कुमार दिखाई, इसमें लिखा है सब। इसकी जो टीका है अमृतचंद की उसकी उसको मैं पढ़ के आया हूँ, अब यहाँ रखे दो ही समस्या, यहाँ ये मेरी टीका, ये जयपुर छाबरा की टीका, ये सोनगढ़ की छपी, ये जयपुर की छपी, और ये बीच में मैं बैठा हूँ। मतलब वो दुनिया को कुमार दिखता है, और उस घड़े में पानी रख करके जो ठंडा पानी होगा उसको पी करके तृप्त होगा, वो तृप्ति भी कुमार को ही होगी, इसलिए भोक्ता भी वही है। कैसा वो नहीं, वो बेच देगा तो पैसा मिलने से जो तृप्ति होगी वो कुमार को होगी। समझे ना, कुमार उसका भोक्ता है। और ये हुआ निमित्त की तरफ से कथन कि घर रूप क्रिया का कर्ता कुमार है और कुमार ही उसका फल भोगता है। अब ये कहते हैं कुमार ने क्या किया, मिट्टी घट रूप परिणमित हुई और घट रूप परिणाम को मिट्टी ने ही पाया और घट रूप परिणति मिट्टी में ही हुई। इसमें तीन शब्द आएंगे अभी, कर्ता परिणामी दरवे क्रिया रूप परिणाम परिणति पर्याय की फिरन एक वस्तु त्रय नाम बना सीधा कहते क्या है। परिणामी द्रव्य करता है, माने जो द्रव्य में परिणामन हुआ वो करता है, जो दूसरे दूर बैठा निमित्त है वो करता नहीं है, ये कह रहा है। और जो हुआ वो कर्म है और जो हुई वो क्रिया है। ये हुआ और कर्म है, जो हुई वो क्रिया, हुआ और हुई में क्या फर्क है। क्यों अन्ना जी, है तुम्हारा क्यों नहीं होगा इसका जवाब, कोई व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं। पहले मैं व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं कि व्याकरण में 6-8 कारक होते हैं, तो एक कर्ता कर्म क्रिया, तो दूसरा कर्म नाम का कारक होता है ना, वो तो है कर्म। और फिर एक कारक जो प्रभावित करते हैं, कारक जिसको, उसे क्रिया बोलते हैं। कुमार ने घड़े को बनाया, तो बनाया ये क्रिया है ना, वर्ब है ना, समझे ना, बनाया एक क्रिया हुई, तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई एक क्रिया हुई और घड़ा कर्म हुआ, एक फर्क है दोनों ही पर्यायी। तो उन्होंने क्या लगा, कर्ता परिणामी द्रव क्रिया रूप परिणाम और परिणति वृद्ध की फिरनी, वृद्ध का जो पलटना है, जो पिंड से घटा वो परिणति है। और एक वस्तु त्रय नाम, इनकी वस्तु एक ही है, माने इनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये तीन तो नाम है, एक द्रव्य की अपेक्षा है, एक पर्याय की अपेक्षा, दो पर्याय की अपेक्षा, जो हुआ वो कर्म और जो जैसे हुआ वो क्रिया। तो कहते मिट्टी करता और मिट्टी ही भोगता, कि मिट्टी ने ही भोगा। मिट्टी ने क्या भोगा, वो ठंडा पानी मिट्टी ने पिया, क्यों कि कुमार ने पिया। अरे कुमार ने तो कभी कभी पिया होगा, मिट्टी तो 24 घंटा पीती है, क्यों। और मिट्टी तो वो जो आबा आबा समझते हैं, जिसमें वो गरम गरम आग और जिसमें उसे पकाया जाता है, उसको भी घड़े ने भोगा है भाई साहब, कुमार तो दूर बैठे रहे। तुम कहते कुमार ने भोगा, अरे पानी भी घड़े ने पहले पिया क्यों, और वह गर्मी भी घड़े ने ही भोगी। और कच्चे से पका रूप क्रिया भी घड़े में ही हुई, कुमार में कुछ नहीं हुआ है? क्या समझ में? अब यहां ये कहते हैं कि भाई दोनों परस्पर निमित्त, दोनों तरफ से लेना, क्या वो राग हुआ तो राग में कर्म का उदय निमित्त है क्रोध। ये गुजरात मराठी लोग तो क्रोध को ही राग कहते हैं, समझे ना। अब ये तो उन्होंने वस्तु स्थिति क्या है समझ लो, प्रमाण का कथन कि हुआ क्या ये बता दिया, घटना क्या घटी, क्या देखो क्या घटी, आत्म करे न कर्म गुण न कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर प्रणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। वस्तु स्थिति तो ये हो गई। इसको बोलते निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। अब ये है कि ये निमित्ताधीन दृष्टि जगत की क्यों, निमित्त की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे व्यवहार बोलते हैं, ये भी समझ लो आप, कम से कम असद्भुत व्यवहार है ना। निमित्त की अपेक्षा और उपादान की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे बोलते हैं निश्चय। तो निमित्त की अपेक्षा जो कथन ऊपर बताया वो हो गया नीचे व्यवहार, व्यवहार में इसे ऐसा कहते हैं। देखो फिर क्या लिखा, क्या थी मैम, बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का कर्ता कहा और अन्य पुद्गल कर्म के भाव का कर्ता नहीं। हे भव्यजन तुम जान लो, परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोग आत्मा, व्यवहार मय का कथन है यह जान लो भव्य। आगे क्लियर बात, और निमित्त की अपेक्षा कथन व्यवहार करता है, इसलिए सारा जगत व्यवहारी है तो उसे निमित्त की ही अपेक्षा कथन करता है। कोई भी पूछे घड़ा किसने बनाया, तो सारी दुनिया में चले जाओ, एक भी आदमी ऐसा कहता नहीं मिला कि मिट्टी ने, सब यही कहेंगे कुमार ने। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि साहब अपने मुमुक्षुओं से पूछो, मुमुक्षुओं से पूछो। अरे मुमुक्षुओं से भी, अभी तो अभी मैं कह रहा हूं ना, लेकिन मैं कल पूछ के बता दूंगा, सब यही जवाब देंगे। क्या क्या जो ना समझाते समझाते भी यही जवाब देंगे, माने इतना अधिक है उसका कथन का जोर। और इस निश्चय की बात तो बहुत तत्व चर्चा में कभी कभी आएगी, अब समझ आई ना। तो कितना है उन्होंने कहा, तो जयचंद छापा ने व्यवहार का कथन बहुत है, निर्माणी में भी लिखा क्या नहीं लिखा। अब देखिए क्यों है, आपके घरों में हम जाएं तो चांदी की थालियां है ना, कहने मनोकर भाई हैं? उसमें क्या लिखा है? मधुकर भाई चिमनलाल साय। ये क्यों नहीं लिखा? ये चांदी की थाली है, चांदी लाल, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मधुकर भाई क्यों लिखा? एक्चुअल में थाली तो चांदी की है, उपादान तो चांदी है ना, तो चांदी का नाम लिखना चाहिए ना। और कोई कोई लिखते भी हैं जिन्हें बेचने के, प्योर चांदी लिखते कि नहीं लिखते ना, मिलावट नहीं है इसमें है? वो दुकानदार जिसे बेचना है वो भले ही चांदी लिखे, लेकिन आपके घर में आते ही वो पूनम चंद छाबड़ा की, सुमन भाई की, मधुकर भाई की हो जाती है, फिर वो चांदी की नहीं रहती है थालियां। क्यों? मैं कहता हूं इसमें इनका क्या है? अगर समझना, मैं तीसरी बात कहता हूं कि चांदी तो उपादान है और सुनार निमित्त, ये क्या है? है? क्यों? वो थाली को बनाने में निमित्त सुनार है जिसने बनाई है, वो ये क्या है? क्यों इनका नाम क्यों? या तो सुनार का लिखते और या चांदी का लिखते, लेकिन नहीं लिखा। ये प्राप्त करता है उसके, इनने उसे प्राप्त किया है। क्यों? वो प्राप्त बेकार भूल गया जल्दी, निवृत्त में प्राप्त करता है। अब कितना दूर का है इनका संबंध? कुछ नहीं है ये। तो मैं ये कहता हूं कि ये क्यों लिखा फिर, और चांदी क्यों नहीं लिखा? कितना महत्व उसका सर्वस्व उसमें लगा है। तो कहते हैं कि उसे लिखने की क्या जरूरत है, समझना, क्योंकि वो तो उसका तो रोम रोम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं। लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? और इसे सुनार ने बनाई होगी, सुनार ने बनाई होगी, ये भी सारा जगत जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मधुकर भाई जी है, क्योंकि इनकी है नहीं। कोई कैसे जाने? तो जिसको नहीं जानने की आशंका होती है वो बार बार लिख लिख के बताता है। ख्याल में आई ना? क्यों समझ में आई कि नहीं आई? अब जब कड़क भाषा बोलता हूं, इन तीनों के नाम हटा देना, छाबड़ा जी का, मधुकर भाई का और सुमन भाई का। अब समझ लेना परमाणु तुम्हारे घर में चांदी है, इसलिए क्या चलो क्यों क्यों कि ये किस बात का ज्ञान कराती है? ये इनका नाम किस बात का ज्ञान कराता है? ये बताता है कि जगत में एक मूर्खादिराज ऐसा है जो इसे अपनी मानता है। इसका पता कैसे चले? क्योंकि इसका पता नहीं चलेगा। निमित्त की कथन से मुख्यता क्यों होती है? क्योंकि नहीं तो उसका पता ही नहीं चले। समझे जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो लिखा है यहां, यहां कहां गया वो बोर्ड? उतर गया, उधर लगा होगा कहीं। कि ये सिविल सिविल के कर्ता कौन है? कांति भाई मोटानी और जो भी जो है ना, रमेश जी, मंगल जी और गणवीर जी, ये क्यों नहीं लिखा गया? हुकुमचंद धारण, संत कुमार पात्र जी, क्यों नहीं लिखा? मर पक्ष तो हम रहे, क्यों ये क्यों लिखा? ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है। ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? यदि वो नहीं लिखा जाता तो किसी को पता नहीं चलता, समझिए ना। तो जिसके नाम के लुप्त होने का डर है उसका उल्लेख किया जाता है। क्यों? और गहराई में जाऊं? खतरनाक बात है, सुननी पड़ेगी। सुनो, बेटा मां का क्या बाप का? घबराना नहीं, सोचना। बेटा मां का क्या बाप का? दोनों का वो तो समझौता वाली बात है। पहले दोनों का हिसाब किताब बता दूं, दोनों का क्या, ये दोनों का बोलने वाले कौन लोग हैं? क्यों मैं बोलता हूं बेटा मम्मी की बात मानना के पापा की, क्यों? तो कोई कहेगा मम्मी की, कोई कहेगा पापा की, और कुछ लोग जो सरदार होंगे वे कहेंगे दोनों की। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। क्यों? दोनों की संभव ही नहीं है एक साथ। मम्मी कहती स्कूल जा, पापा कहते हैं मेरे साथ चल दुकान पे। अब दोनों वो स्कूल जाए कि दुकान पे जाए, बोलो। मम्मी कहती सब्जी ला, पापा कहते स्कूल जा, दोनों एक साथ वो कैसे सकता है? कि दोनों की कहने में बहुत अच्छी लगती है। मां का कहना मानना के पिता का, समझ में आ गया आपकी? मैं क्या मां का नहीं मानेगा तो बिना सब्जी की रोटी खानी पड़ेगी, क्यों? और बाप भी नहीं मानेगा तो जिंदगी भर दुकान पे बैठना पड़ेगा, पर नहीं पाएगा। वहां तो कोई कारण है ना। और चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं, कौन? कि मां की मानना के पिता की, कि एक है मां की, दूसरा कहता है पिता की, तीसरा कहता है दोनों की, चौथा कहता है दोनों की नहीं मानना। चार रास्ते हो सकते हैं ना। अब मेरे से मतलब कोई जो ये कहे कि मम्मी की मानना, मान लो तुम ये जवाब दो, तो मैं कहूंगा ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में इंदिरा गांधी का राज अभी भी चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहे पापा की, कि भले ही इंदिरा गांधी का हो लेकिन गद्दी पे तो मनमोहन सिंह ही बैठा है। क्या समझ में आई कि नहीं आई? और जो कहे दोनों की, किसकी सत्ता है इस देश में, सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की? क्यों लिखा जाएगा इतिहास में कि दो प्रधानमंत्री थे? और चौथे कौन है? वो लड़का है ना। मम्मी ने कहा सब्जी लाओ, पापा ने कहा स्कूल जाओ, तो वो जिसका इंदिरा गांधी का राज है जिसके घर में, वो सब्जी लेने जाएगा। पापा कहेंगे क्यों स्कूल नहीं गया? मम्मी ने सब्जी लेने भेजा था। भिड़ना हो तो मम्मी से भिड़ो, उनसे भिड़ने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। यदि स्कूल जाना हुआ तो स्कूल चले गए। मम्मी ने कहा सब्जी नहीं लाया, कि पापा ने स्कूल भेज दिया था, क्यों? उनसे बात करो। तो अपने मन का कर सकता ना वो, दोनों का तो कर ही नहीं सकता। अब उसने ना स्कूल गया और ना सर्दी ले रह गया, तो फिर मम्मी ने पूछा कि पापा कहते हैं स्कूल जाओ, पापा ने कहा स्कूल नहीं है, मम्मी कहती सब्जी लाओ। मैं तो फिर तू कहीं दो में से एकाध तो करता। मैं पक्षपात नहीं करता हूं। क्या है वो कहते हैं निश्चय व्यवहार दोनों की मान लो, लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध बोलते हैं ना। एक कहता है कि इसका कर्ता है परदेव का आत्मा, और दूसरा कर्ता नहीं है। बोलो, एक कहता है घरे को कुमार ने बनाया और एक कहता है मिट्टी ने बनाया, दोनों की कैसे मान लें भाई साहब? बिना नए विभाग के इसका निपटारा कभी तीन लोग और तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए जितना पढ़ना जरूरी समय सार है, उतना ही जरूरी नए चक्र भी है, निमित्तोपादान भी है, निश्चय व्यवहार भी है। क्यों? इसलिए हमने दोनों क्लासेस चलाई हैं। निश्चय व्यवहार की भी चलती है, अभय जी लेते हैं क्या नहीं, और निमित्तोपादान की भी चलती है, उज्ज्वला बहन लेती है। उसके बिना तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। कि दोनों परस्पर निमित्त हैं। देखो आत्म करें ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करें, पर परस्पर परनमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। ये उसका निमित्त है, वो उसका निमित्त है। अब एक अपना प्रश्न रह गया बाकी, तो बेटा किसका? माँ के बाप का। क्यों बोलो? दोनों का बोलो, बता दिया दोनों का जवाब। तो मैंने इसने इतना बताया, इतना उदाहरण दिया दोनों का कहने में। तो क्यों? यदि दोनों का है कि माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया, माँ का नाम क्यों नहीं लिखाया? बताओ। बेटा यदि बाप का है, माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया? दोनों का लिखाने के लिए। पर आजकल कुछ लोग अपनी अम्मा का लिखाने लगे। मालूम आपको, जिस स्कूल में किसी बच्चे का नाम की जगह पिता के नाम की जगह माँ का नाम लिखा हो, तो उसका क्या अर्थ होता है जानते हो? अरे इसके बाप का पता नहीं है, इसलिए माँ को नाम लिखाया है, इसलिए मतलब वेश्या पुत्र है। समझ गया? माँ भी भर्ती कराने जाए तो स्कूल का जो भर्ती करने वाला क्लर्क बाप का नाम पूछेगा, और वो अपना नाम बोलेगी तो ऐसा देखेगा, मैंने बाप का पूछा है। क्यों बोलेगी या नहीं बोलेगी? पूछेगी। तो बाप का नाम क्यों लिखा जाता है, जबकि माँ का ज्यादा योगदान है। 9 महीना पेट में माँ ने रखा, माँ ने पैदा किया, 18 महीना गोद में रखा, और वो खुद गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, मन मूत्र की सब सब किया, खाना पीना सारी की ना सेवा। इतना योगदान माँ का है, बाप का तो नहीं है। उसे हम ऋण भी चुकाते हैं, माँ बाप बोलते हैं, बाप माँ नहीं बोलते कोई। सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते, बोलते ना। तो योगदान तो माँ का ज्यादा है, और नाम बाप का ज्यादा क्यों लिखा जाता है? गोत्र कौन है उसका, बाप का क्या माँ का? काशलीवाल की लड़की पादमी को दी, पादमी का लड़का और काशलीवाल की लड़की, उनके जो लड़का हुआ वो पादमी होगा कि काशलीवाल? कि दोनों कहने वाले तो वो है कि पादमी काशलीवाल। ऐसा है तो उदाहरण विश्व में है? एक आध उदाहरण बता सकता है कोई? सुना, इंदिरा नेहरू गांधी, देखना जाके कोर्ट में लिखती थी ना वो, जब वो फार्म भरने जाती थी ना चुनाव का, तो वहां लिखती थी इंदिरा नेहरू गांधी। नेहरू बाप का नाम, गांधी पति का नाम। तो संजय दत्त की बहन है ना, वो भी ऐसे ही लिखती है, शादीशुदा है। बाप का वोट चुनाने वोट बैंक चाहिए, नेहरू का भी वोट चाहिए और गांधी का भी वोट चाहिए। कौन जानता है फिरोज गांधी का गांधी है? सब जानते हैं महात्मा गांधी का गांधी है। क्यों नहीं? ऐसा नहीं चलता लोगों, समझ गए ना। नाम पिता का क्यों, माँ का क्यों नहीं? इसलिए कि माँ का नाम नहीं लिखे तो सारी दुनिया को पता है कि इसकी ये माँ है, वो छिप ही नहीं सकती। अस्पताल में डिलीवरी होगी, 9 महीना पेट में बच्चा रहेगा, सब देखेंगे, दूध पिलाएगी, क्यों? वो छिप ही नहीं रह सकती है। लेकिन बाप का नाम नहीं लिखा हो तो पता ही नहीं चलेगा। समझे ना, कि जिसका पता नहीं चलने का खतरा हो उसका लिखाओ, जिससे कि वो पता चलेगा किसका बेटा है। माँ का क्या क्या लिखाना है? माँ का तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है ना। बच्चे में मान उपादान है और बाप निमित्त, जरा ये उदाहरण में समझना। तो माँ कैसे निमित्त होगी, उपादान कैसे हो गई? उपादान तो उसका आत्मा है। और इसका प्रमाण दूं आपको, वाल्मीकि रामायण पढ़ी किसी ने? मैंने पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, दो आदमी हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। जब रामचंद्र जी जंगल में जाने लगे तो अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उन्होंने जाके कहा, अहम गमस्यामि महावनम, हे माँ मैं भयंकर जंगल जा रहा हूँ पिता की आज्ञा से। और सारी अपनी बात कही तो कौशल्या जवाब देती है, वो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। दशरथात मई जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। क्या कहते हैं उसमें लिखा है रामायण में जाके पढ़ना, वाल्मीकि की रामायण। दशरथात मई जाता, दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। इसका मतलब है दशरथ हैं निमित्त और मुझ में पैदा हुए, जिसमें जो जिस देव की जो परिणति वो उसमें तो वहां भी निमित्त को मुख्यता मिली ना। बाप का गोत्र लिखा जाता है, बाप का गोत्र लिखा जाता है, और गुजरात में तो 24 घंटे नाम ही बाप का साथ में लिखा जाता है, बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता। अरे बाबू भाई मेहता को बाबू भाई मेहता कौन है, पिताजी का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे हिंदी प्रांत में ऐसा कोई नाम ले तो लेने के देने पर जाए क्यों? अरे हमारे यहां तो इतनी मर्यादा है कि हमारे पिताजी का नाम हरदास जी था, तो हमारी मम्मी ने जिंदगी में कभी हल्दी शब्द नहीं बोला, और हल्दी और हरदास में कितनी दूरी है। वो हल्दी को पीली बोलते थे, पीली डाल दो दाग में, पीली डाल दो। और गुजरात में तो ये है ऐसा है फटाफट फटाफट सब खेमसेन भाई बिता रहे 80 बरस के, और महिलाएं खेमसेन भाई नमस्ते खेमसेन भाई। क्या कर देंगे अपने दादा की उम्र के व्यक्ति का नाम ले लें। बाबू भाई ने मुझे अपने ससुर से पहले सबसे पहले परिचय कराया तो ये मीठा लाल धराओ पंडित जी, ये मीठा लाल बारह ससुरा के। क्या करते हो उन्हीं के मुंह पे मीठा लाल जीवी नहीं। हमारे यहां तो हम नाम ले ही नहीं सकते इसीलिए लोगों को पता भी नहीं पूछे बन जाते ना क्या क्या नाम है, क्या नाम है पिताजी का, क्या नाम है पिताजी का, क्यों पता ही नहीं। तो इतना नाम लिखा क्यों? क्या बिना लिखाए पता नहीं चलेगा। तो निमित्त की मुख्यता से सारा व्यवहार लोक में चलता है। तो व्यवहार निमित्त के साथ जुड़ी है और निश्चय की उपादान से जुड़ी है। तो व्यवहार नय का कथन है। क्या कथन है व्यवहार नय का? हे भव्य जन तुम जान लो, परमार्थ से आत्मा निज भाव को करता, निज भाव को ही भोगता, अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोग आत्मा। अरे नय का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा। यहां तक बात उनने कह दी। अब वो कहते हैं कि व्यवहार नय का जो कथन है जरा इसकी सच्चाई पे विचार तो करें क्या। तो वो अब अगली गाथा आई के पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। देखो पहले तो खुद कह दिया करता है और आगम के हिसाब से कह दिया है, और अभी उसमें यदि लगाते हैं कि यदि पुद्गल कर्म को आत्मा करे और भोगे तो दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि आत्मा का काम कौन करेगा? तो पुद्गल का काम हुआ, पुद्गल में क्रिया होना ये काम पुद्गल का काम है, आत्मा का तो नहीं है। पुद्गल में जो क्रिया हुई वो पुद्गल का काम हुआ ना, तो यदि आत्मा पुद्गल को करे भोगे तो आत्मा का काम कौन करेगा? तो पुद्गल का काम आत्मा करेगा तो पुद्गल क्या करेगा, ये समस्या है। न्याय तो ये है कि हर एक को अपना अपना करना चाहिए। निश्चय ने ये कहता है आत्मा का काम आत्मा करे, पुद्गल का काम पुद्गल करे, सीधी सच्ची बात है। विनोबा भावे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत मार्मिक, कि हिंदुस्तान इतना गंदा क्यों है और अमेरिका इतना स्वच्छ साफ क्यों है। उनने कहा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सारा हिंदुस्तान कितना गंदा क्यों है इसकी बहुत चिंता है, पर अमेरिका वालों को बिल्कुल चिंता नहीं है। फिर भी अमेरिका साफ है कि अमेरिका वालों को चिंता बिल्कुल नहीं है सारे अमेरिका की, लेकिन अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क तक का हिस्सा रोजाना हर अमेरिकन अपने हाथ से साफ करता है। इसलिए हिंदुस्तान का कोई आदमी अपना घर अपना आंगन अपने घर के बाहर का हिस्सा सड़क तक साफ नहीं करता है, चिंता सारे देश की करता है और सारा घर का कूड़ा निकाल के वहीं डाल देता है, इसलिए सारा देश गंदा है। क्या उपाय है, कितने कर्मचारी लगाए जाएं, कितने कर्मचारी लगाए जाएं तो हिंदुस्तान साफ रहेगा। क्यों, अभी कर्मचारी आएगा और धो धोवा के सफाई करके जाएगा और 5 मिनट बाद हम घर से बाहर निकलेंगे और सामान निकाल के फेंक देंगे, धार के सामने फेंक देंगे सड़क में फिर क्यों। इसलिए तो क्या उपाय है, विनोबा जी से पूछा, उनने कहा उपाय ये है सब हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की चिंता करना छोड़ें, सिर्फ अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क सामने का हिस्सा साफ कर लें, सारा हिंदुस्तान एक दिन में साफ हो जाएगा, एक नया पैसा खर्च हुए बिना। कितने कर्मचारी रखो, कितना बजट बनेगा, कितना क्या होगा, क्या जरूरत है। अरे यही कहते हैं एक देव का दूसरा देव करे, कितनी व्यवस्था करे, कौन कौन किसका करे, सब अपना अपना कर ले, आत्मा अपना कर ले, पुद्गल अपना कर ले, कर्म अपना कर ले, शरीर अपना कर ले, क्यों, नाक अपना काम करे, कान अपना काम करे, स्त्री अपना करे, पुरुष अपना करे, क्यों है तो ऐसा ही कि स्त्री अपना करती है पुरुष अपना करता है, कोई किसी का करता ही नहीं है, बस बातें करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया कि ये जो एक दूसरे को निमित्त हैं, थे तो निमित्त और इनने मान लिया कर्ता और व्यवहार की भाषा में उसे कर्ता कहते हैं। अब यदि करे पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा तो दुख क्रिया अव्यतिरिक्त हो, दोनों की क्रिया, एक जीव की क्रिया एक पुद्गल की क्रिया, दोनों अव्यतिरिक्त माने एक हो जाएंगे, जब दोनों की क्रिया एक हो जाएगी तो दोनों का कर्ता एक हो जाएगा, तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा। जीव पुद्गल की क्रिया करने जाए और पुद्गल को भोगे तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव कहते हैं, वो जो लोग रोजाना सत्कारे ले लेके आपको सुनाते हैं, कौन, यदि तुझे भैंस का स्वामी बनना है तो बेटा पाड़ा बनना पड़ेगा, जड़ की क्रिया का कर्ता बनना है तो जड़ बनना पड़ेगा। बोल, यदि कुमार को घड़ा का कर्ता बनना है तो मिट्टी बनना पड़ेगा, फिर वो मिट्टी को रौंद नहीं पाएगा, खुद रौंदना पड़ेगा। माटी कहे कुमार से तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, ये झगड़ा खत्म है। मेरे मन में एक बात आ रही बार बार और मैं उसे बहुत दबा रहा हूं लेकिन दब नहीं रही है। एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया है इस देश में, उसका नाम है क्या, मिट्टी का है ना, क्या है, मूक माटी, ज्यादा डिफिकल्ट मत नहीं करना, ये मुंह कहीं रहना। तो मुझे हिंदुस्तान में तो उसे पढ़ने का समय नहीं मिला था, लेकिन मैं अमेरिका गया तो वो जिसके घर में जो किताब रखी होती मैं उठाकर उसे पूरी पढ़ जाता हूँ, दो चार दिन पूरा मिल जाते तो ऐसी सारी किताबें मैं अमेरिका में पढ़ जाता हूँ। फिर मैं भरते हुए भी मैंने वहीं पढ़ा था, मूक माटी भी वहीं पढ़ी थी। तो मूक माटी मैंने क्या है कि मट्टी तो मूक है, बोलती नहीं है, और ये मिट्टी का घड़ा बनाना है तो ये मिट्टी ऐसे ऐसे ताबे में नहीं आएगी, इसको खोदो, फिर पीटो, फिर मिट्टी में मिलाकर रौंदो, पैरों से कुचलो, फिर डंडे से मार मार के ठीक करो, फिर इसको सूली पर चढ़ाओ, सकेल सकेल है ना, और चला करके अपना हिसाब, तब से तुम्हारे हिसाब से बनेगी, और बनाकर फिर से आग में पकाओ तब घड़ा बनेगा। मिट्टी तो मूक है, वो क्या कर सकती है? यदि कुमार ये सब नहीं करे, खदान में से मिट्टी को खोद के नहीं लाया है, और ये सारी दुर्दशा मिट्टी की नहीं करे, इतने साथ दुर्व्यवहार मिट्टी के साथ नहीं करे, तो वो घड़ा नहीं बन सकती। ऐसे उपादान तो मिट्टी जैसा मूक है, कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है, सही खदान में ही पड़ा रहता है, और जो गुरु रूपी कुमार है वो उसको उपादान को पकड़ के कूटे पीटे खोदे मारे पैरों से रौंदे तपाए, तपश्चर्या करके उपवास कर करा करके, तो फिर ये मोक्ष में चला जाएगा। उपादान उपादान खुद क्या कर सकता है, सब करेगा वो कुमार, तो निमित्त ही करेगा, उपादान से क्या होने वाला है। इसलिए इन उपादान वादियों की अच्छी पिटाई करना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। वो सही, क्योंकि यदि किसी को पढ़ना है तो पढ़ना, लेकिन मैंने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से पढ़ोगे तो समझ में आएगी। जैसे गुरुदेव ने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से समय सार पढ़ोगे तो समय सार समझ में आएगा, और उस दृष्टि से नहीं पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात जितनी सत्य है ना उतनी ही सत्य है। एक एक कदम पर तुम्हें बड़ी परमा दू, पढ़ना एक बार तुम कभी हो ना पढ़ना। वो सिर्फ इसलिए ही लिखी गई, ये संदेश देने के लिए ही लिखी गई, क्या कि निमित्त का क्या स्थान है कार्य में, उपादान का क्या स्थान है, ये उपादान की उपादान से ही सब होता, उपादान से ही सब होता, मिट्टी घड़ा का करता, मिट्टी के पागल हो गए, अरे कुमार ने बनाई है ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके विद्यार्थी से पढ़ते हैं। पुराने जमाने में था अच्छी पिटाई होती थी, अब होता नहीं, हमारे यहां नहीं होगी पिटाई मालूम। पहले तो माँ बाप जाते थे स्कूल में, मालूम क्या बोलते थे, कि मास्टर जी हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख के होशियार बनना चाहिए। समझे इसका अर्थ क्या? नहीं कि तुम इतनी पिटाई करोगे कि चमड़ी उधर जाए तब तक हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इतना ध्यान रखना कि हड्डी ना टूट जाए। समझे ना, हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, ऐसा बोलते थे हर माँ बाप, जाके बोलना पड़ता था, ऐसे अदालत में जाके कहना पड़ता है जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा स्कूल में जाके ऐसा बोलना पड़ता था। पुलिस में यही होता है ना, जो जिस भी पिटाई करते हैं हड्डी नहीं तोड़ते, हड्डी टूटे तो फिर उनका केस चल जाए, क्यों जिसमें बाहर से दिखा नहीं, डॉक्टर ही पकड़ में आए नहीं, और धुनाई अच्छी हो, क्यों? तो इस दृष्टि से ये कहते हैं आप गहराई से पढ़ो, ये निमित्त उपादान भी आ गया, निश्चय व्यवहार भी आ गया, त्रिकाली देव भगवान भी आ गया, इसमें सब आ जाएगा, और हमारी सारी क्लासें चल रही हैं, प्रौढ़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी, यदि सब में आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज पर ध्यान देंगे ना, ख्याल नहीं ना, तो सब बात ख्याल में आएगी, वो परम पारम भाव भाव भी पकड़ में आएगा, उसके पकड़ने के चिन्ह क्या है वो भी समझ में आएंगे। सुबह से शाम तक सारा इंतजाम पक्का है, हैं? हम तो मिट्टी जैसे उपादान है, जितना तो पीटो पिटो के तैयार है। अरे नहीं, तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। क्यों बोलो, किसके लिए है ये शिविर, किसके लिए है, पढ़ाने वालों के लिए है, हमारे लिए है कि हमें प्रसन्न करने का मौका मिलेगा, क्या के लिए, कि जो तत्व समझना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए है, वो ये बाकी के सब तो मजदूर हैं, हमसे लेकर के वो रोटी बनाने वाली बाई तक, पबिछात करने वाले तक, ये तो सब मजदूर हैं, कोई छोटा मजदूर कोई बड़ा मजदूर, ख्याल में आए ना, बाकी सब मजदूर हैं, निमित्त है ना, निमित्त मजदूर होता है और उपादान तुम हो क्योंकि तुम्हें उपलब्धि होनी है। जब यहां से एक तारीख दो तारीख को आप हम जाएंगे तब आपके पास कुछ नया माल होगा जो आपने यहां प्राप्त किया है, ख्याल में ना, उसे आप लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे। हमारे अध्यात्म ने एक प्रयोग किया है, कल इनकी एक फिल्म बनाई है लड़कों की, इनसे कहा बेटा पढ़ाओ, पढ़वाया है सबसे, नहीं क्यों क्या बनवाई है कि कैसे आए हमारे पास इसके प्रूफ के लिए, फिर जब जाएंगे तो फिर इनको पढ़वाएंगे और फिर इनकी फिल्म बनाएंगे कि यहां कैसे आए थे और कैसे जा रहे, ये आपको बताने के लिए, क्या क्योंकि आप तो भाग गए बम्बई, देख ही नहीं रहे, अब क्या करें, हम तुम्हें बम्बई में जाके दिखाएंगे, छोड़े जा रहे बेटा, क्यों सोन भाई कि देखो हमें कैसा माल आया था और कैसा बन के जा रहा है। तो आप तो कुछ लेके जाएंगे, विद्यार्थी तो अध्यापक बन के जाएंगे और हम अपना गला खराब करके जाएंगे। क्यों हमारे लिए तो 43 में है भाई साहब, हमें क्या देखना उसका, हमें क्या सुनना है, हमारे तो रोम रोम में बस रहा है, हम तो आपको घर में बैठे बैठे बताते हैं कि आज चौथा दिन है तो आदर्श माचन अनुकरण माचन चल रहा होगा कि कौन से प्रश्नोत्तर चल रहे होंगे, हम वहां बता दें कि वहां क्या चल रहा होगा, क्या पढ़ाया जा रहा होगा, आज का कौन सा पाठ चल रहा होगा, हम तो वहां घर बैठे बैठे बता देंगे बिना ही सुने, क्योंकि नक्की है कि 18 दिन में किस दिन क्या होगा, हमने किया है वो नक्की, क्यों तो समझ लो भाई आप उपादान हो और हम निमित्त हैं, जो भी धुनाई करेंगे हम अपनी करेंगे, किसी आपकी नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहो।